أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد و آل محمد. ہم بات کر رہے تھے آداب الصلاۃ کے حوالے سے، اور میں نے آپ کے سامنے آداب الصلاۃ کے ابتدائی صفحات ہیں اس سے پڑھنا شروع کیا تھا، اور جو پہلی چیز آغا خمینی نے بیان کی ہے اس کی خاص باتیں یہ تھیں کہ شہوت اور غفلت کے حجابات نے ہماری بصیرت کو جمال الہی کو دیکھنے سے محروم کر دیا ہے، اور حب دنیا اور شیطنت نے ہماری توجہ کو اس کے عزت و جلالت سے دور کر دیا ہے. اور اس بات کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ شہوت اور غفلت جمال الہی کو دیکھنے میں کیسے رکاوٹ بنتے ہیں، اور حب دنیا اور شیطنت ایون جلال ہے، جنہیں جلال کا مطلب ہے کہ جو چیز خوف دلاتی ہے، جو چیز خوف زدہ کرتی کہ یہ اگر آپ سوچیں تو یہ بہت ہی بہت گہری معرفت کی بات ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ یہ بذات خود ایک پوری تقریر کا بیس بن سکتا ہے کہ شہوت اور غفلت کے پردے جمال الہی کو دیکھنے سے رکاوٹ بنتے ہیں، اور حب دنیا اور شیطنت کے پردے جلال الہی کے جلووں کو دیکھنے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور جلال اور جمال میں بنیادی فرق کیا ہے کہ جلال اللہ کی قوت اور قدرت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جمال خدا کی محبت اور اس کے لطف و کرم کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر ہم نے بات کی تھی، اور اس کے بعد بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ہماری حالت کیا ہے کہ جیسے عنکبوت کی مانند ہم متحیر ہیں. اور عنکبوت کے حوالے سے جو آیت ہے اس کو اگر ہم ایک دفعہ پھر غور سے دیکھ لیں، یہ سورہ عنکبوت کی آیت 40-41 کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال، مثل یعنی ان لوگوں کی حقیقت، ان لوگوں کی سچائی، ان کی اصلی حالت کہ جنہوں نے خدا کے سوا دوسروں کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے، سرپرست بنا لیا ہے، دوسروں کے ساتھ رشتہ ولایت میں جڑے ہوئے ہیں خدا کو چھوڑ کر، ان کی مثال کس کی ہے؟ کمثل العنکبوت، ان کی مثال گویا کے مکڑی. اچھا، اکثر اوقات اس کے ترجمے میں جو ہے نا، یہاں پر ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے اس کی تفسیر میں، کہ اکثر مفسرین اس کو اس طریقے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ مکڑی کی مانند ہیں، لیکن علامہ طباطبائی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آیت یہاں پہ رک نہیں رہی ہے عنکبوت پر، بلکہ یہ آگے اس طریقے سے بڑھ رہی ہے. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، انہوں نے کہا یہ تینوں لفظ مل کے اس مثال کو بیان کر رہے ہیں، یعنی مکڑی جس نے اپنا گھر بنایا یا جس نے اپنا گھر پکڑا، ان کی مثال ان کی ہے، یعنی یہ وہ لوگ مکڑی نہیں بلکہ مکڑی جب اپنا گھر بنائے اس کی مثال ان لوگوں جیسی ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو، سورہ عنکبوت آیت 40، خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور جس کو میں نے اس طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ مکڑی جب اپنا گھر بنا رہی ہوتی ہے تو اس میں دقت بھی ہوتی ہے، اس میں توجہ بھی ہوتی ہے، اس میں انٹریکیسی بھی ہوتی ہے، ڈیلیکیسی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یعنی ہم لوگوں کے دنیا بنانے میں موجود ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہوتی. اور اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ اور گھروں میں سب سے زیادہ کمزور، اوہنا سب سے ضعیف گھر جو ہے، सबसे ज़ईफ़ घर जो है वो किसका है? अनकबूत का, मकड़ी का घर। तो ये बहुत खूबसूरत ये बयान है कि अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ख्याल में वो बहुत दिक्कत वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, उसने इल्म भी हासिल किया, नॉलेज भी हासिल की, वो एक बहुत अच्छा माहिर भी है, स्किलफुल भी है, लेकिन जैसे मैं वहाँ आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि असल मसला ज़िंदगी का विलायत है, गलत विलायत के तहत ज़िंदगी गुजार दी, जितना कुछ बनाया वो सब का सब बैते अनकबूत है। यानी इस पर लाइफ की कामयाबी और नाकामी का मेयार नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान था, मैं बहुत स्किलफुल पर्सन था, मैंने ज़िंदगी को बहुत डेलिकेसी और सोफिस्टिकेशन के साथ गुजारा, इस पर नहीं डिपेंडेंट है। असल ज़िंदगी इस पर डिपेंडेंट है, ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी कि किसकी विलायत में ज़िंदगी गुजारी। यानी इसकी एक मिसाल भी हम सोच सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपना घर बना रहे हैं, हमने घर बनाया बेहतरीन, दुनिया की हर नेमत हर फैसिलिटी उसमें लगा दी, लेकिन घर एक ऐसी ज़मीन पर बनाया कि जो वॉल्केनिक है, कि जहाँ पर आए दिन आतशफशां जो है वो फटता रहता है, वो घर बेहतर है या वो घर बेहतर है कि जो एक साबित और पायदार ज़मीन में हो लेकिन एक झोंपड़ी हो, कौन सा घर बेहतर है? तो ये बिल्कुल इसी तरीके से विलायत या औलिया का मसला जो है ज़िंदगी में ये अहम तरीन है। बहरहाल तो यहाँ पर ये कहते हैं हमारी मिसाल ऐसी है, अनकबूत किसी है, कि हम अपनी ज़िंदगी को मकड़ी जिस तरीके से अपना घर बना रही होती है वो सब कर रही होती, इस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन आखिर में क्या चीज़ सामने आती है? इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। ठीक है, अच्छा इसमें एक दो बातें मैं और चाह रहा था कि हम ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ इन्होंने दो मिसालें दी हैं, एक अनकबूत की मिसाल दी है, एक रेशम के कीड़े की मिसाल दी है, और रेशम के कीड़े की मिसाल इस तरीके से दी है कि वो भी जितने अपनी ज़िंदगी में जाला बनाता रहता है तो वो खुद अपने को ही बंद कर देता है, अपने गिर्द ही पूरा जाल बुनता रहता है। उन्होंने कहा कि ये जो अब रेशम का कीड़ा है इसके तरीके से हम अपनी शहवतों और उम्मीदों का जाल अपने गिर्द बुनते रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, कि आखिर में हमें पता चला कि हम खुद ही फंस गए उसके अंदर, जब यहाँ से निकलने का वक्त आया, इस ज़िंदगी से अपनी असल ज़िंदगी की तरफ जाने का वक्त आया, तो पता चला कि हमने अपने गिर्द खुद ही ऐसा जाल बुन दिया है कि अब हम उससे निकलने के काबिल नहीं हैं। जो पहले भी मैंने आपकी खिदमत में एक मिसाल अर्ज़ की थी कि हमारे सामने एक सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया और औलिया अलैहिस्सलाम इस ज़िंदगी की नेमतों के इस्तेमाल में इतने सादा क्यों थे? एक सवाल है ना, जबकि आखिरत के हवाले से ये बात तयशुदा है कि बेहतरीन नेमतें उनके लिए मैसर हैं। क्या हम उनके लिए ये बात कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच इसलिए थी कि जल्द ख़त्म हो जाने वाली नेमतों को छोड़कर हमेशा बाकी रह जाने वाली नेमतों के लिए उन्होंने काम किया? लेकिन उसके साथ एक और गहरी बात भी मौजूद है, वो ये है कि दुनिया के अंदर आप जितना ज़्यादा नेमतों को इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा शहवत और आरज़ुओं का जाल हमारे नफ्स में बुनता चला जाता है। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, हम दुनिया में जितनी नेमतों का इस्तेमाल बढ़ाते हैं, यानी नेमतों का इस्तेमाल बढ़ाने से मतलब मेरा घर सादा अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, फैसिलिटीज़ बढ़ जाएं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएं, मेरा खाना भी ज़्यादा है, मेरे दस्तरखान पर दो चार डिशेस और ऐड हो जाएं, सही हलाल है, इसमें कोई हलाल हराम की बहस नहीं है, लेकिन जब हम ये काम करेंगे तो हमारे नफ्स के अंदर आरज़ुओं और ख्वाहिशात का जाल मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है, या इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जा सकता है कि इंसान, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी अर्ज़ किया था कि इंसान की हकीकी कब्र वो नहीं है कि जिसमें उसको दफनाया जाता है, इंसान की हकीकी कब्र उसकी जिस्मानियात है। ठीक है, तो उन लोगों को क्योंकि उनकी मारिफत कामिल होती थी, कामिल थी, इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी कब्र को कमजोर रखा, इस पिंजरे को, ताकि जब निकलने का मौका आए तो इसकी दीवार तोड़ के आसानी से निकल जाए। लेकिन हमारी हिमाकत क्या है कि जो चीज़ हमारा कैदखाना है, जो चीज़ हमारी कब्र है, हम अपने हाथों से उसकी दीवारों को मजबूत कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा सामान फराहम कर रहे हैं। तो यानी जब दुनिया की नेमतें, सही है, ये बहस इस पे नहीं है कि हलाल है या हराम है, हलाल हराम की बहस नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा हम इन नेमतों के पीछे जाते हैं उतना ही ज़्यादा उम्मीदों और शहवात का जाल या ये उनसुर हमारे नफ्स के अंदर कवी और स्ट्रांग होता चला जाता है। कि जिस तरीके से आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में है ना, कि उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए तो दस्तरखान बिछाया, लेकिन अपना दस्तरखान, अपनी ग़िज़ा हमेशा बहुत सादा रखी है, चाहे माल हो या ना हो, वसाइल हो या ना हो। तो बहरहाल ये यानी इस चीज़ को मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से समझ लें। इसमें एक और भी मैंने लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज़ को पढ़ा था जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, अज़ाब, शायद मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि अज़ाब का जो लफ्ज़ है ये बुनियादी तौर से अज़ब से आया है, अज़ब यानी मीठा, क्योंकि कुरान करीम में हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, दो दरियाओं के बारे में कि जो एक दूसरे से मिले हुए चल रहे हैं, लेकिन एक उनमें से मीठा है और खुशगवार है, एक कड़वा है तल्ख, जिसका मज़ा है अज़ब का मज़ा मीठा है। अज़ब से ये अज़ाब, जिसके माने तंगी और परेशानी और तकलीफ़ और इन सब के, तो इसके बारे में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे मिला था कि अरब में बेसिकली, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर सहरा का माहौल था, तो उनके लिए मीठा पानी एक बहुत बड़ी दौलत और नेमत थी। तो बाकायदा मीठे पानी को जमा करने के लिए हौज़ वगैरह बनाए जाते थे और वो सारी चीज़ें होती थी कि मीठे पानी को स्टोर किया जाए, उसको कंटेन किया जाए। अच्छा, जब आप पानी को इस तरीके से स्टोर करते हैं तो रफ्ता रफ्ता उसमें मिट्टी और कूड़ा और ये वो सब चीज़ें, जबकि अगर ओपन हमारे तरीके के कंसील टैंक्स नहीं, तो थोड़े अरसे के बाद जब लोग उसी मीठे पानी को निकालने जाते थे या यूज़ करने जाते थे, तो उन्हें लगता था कि जैसे पानी को निकाला, और ख़ास तौर से जब पानी हिलता है तो उसमें से वो सारी गर्द वर्द और वो सब उठ के ऊपर आती है। तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अज़बल हाउज़, यानी ये जो मीठा पानी है अब इसको क्या हो गया, अज़बल हाउज़, यानी हाउज़ का ख़राब हो गया पानी। तो ये लफ्ज़ इस सेंस में आना शुरू हुआ, यानी अज़ब से अज़बा, यानी कि वो चीज़ जो हमने जमा की थी और जो हमारे लिहाज से बहुत मीठी और खुशगवार थी, वो ख़राब हो गई, गंदी हो गई, डर्टी हो गई। तो उसमें लिखा था उस लुगत के उसमें बैकग्राउंड में कि ये अज़ाब का सेंस ये है कि हमने जो लाइफ है कि जिसको एक मीठा होना चाहिए था, जिसका मज़ा खुशगवार होना चाहिए था, हमने तवज्जो नहीं की, उसमें ये गर्द और कूड़ा करकट और गंदगी शामिल होती गई। तो जब हम इसका नेट रिजल्ट निकालने गए यानी इसको यूज़ करने गए, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये सब कुछ गंदा और ख़राब हो चुका है। यानी ये ज़िंदगी जो खुदा ने हमको दी है, इसका नेट रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए था मीठा, खुशगवार, कि आखिरत की अबदी दायमी जन्नत की नेमतें। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस चीज को जो खुदा ने हमको नेमत दी थी, इसको छोड़ दिया कि इसमें इर्द गिर्द से शहवतों की, गफलतों की, शैतनत की चीज़ें, उसमें आके इम्प्योरिटीज़ मिलती गईं। और जब हम आखिर में जाके हमने अपने सरमाए को देखने की कोशिश की, तो नाउ इट इज़ ऑल डर्टी एंड मेस्ड अप। तो अज़ाब हकीकतन, क्योंकि तमाम चीज़ों में एक बात बड़ी अहम है कि जो कुछ भी आखिरत में मिल रहा है, वो सब का सब इंसान के अपने हाथों की कमाई है। यानी खराबी की बात खास तौर से कर रहा हूँ कि जितनी भी खराबी है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो खुदा अपने पास से देगा बंदे को। یعنی خدا نے انسانوں کے لیے کوئی خرابی نہیں رکھی ہے، جتنی بھی خرابی ہے وہ سب کی سب ہم خود اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں اور خود اپنے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے، اس کنسیپٹ سے مجھے یہ عذاب والی ایکسپلینیشن قریب تر لگی کہ عذاب یعنی وہ چیز، وہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی تھی خوشگوار، جیسے کہ وہ پانی جس نے بڑے شوق سے میٹھا پانی جمع کیا تھا لیکن اس کو صحیح طریقے سے بچایا نہیں، پروٹیکٹ نہیں کیا، اور جب وہ اس پانی کو استعمال کرنے گیا تو وہ میٹھا پانی ایک مطلب ناقابل استعمال چیز کی شکل میں کنورٹ ہو چکا تھا۔ تو بہرحال ایک یہ چیز۔ اچھا پھر آگے چل کے پھر یہ فرماتے ہیں، یعنی کہ اس بیان سے آگے، کہ ان تمام حجابات میں جو ہم نے خود اپنے گرد بن لیے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالم غیب اور محفل ان سے الہی کی طرف سے ہماری نگاہیں بند ہو گئی ہیں، شٹ آف ہو گئی ہیں۔ یعنی عالم غیب کے حوالے سے اب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہماری آنکھیں اس بارے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہیں کہ عالم غیب میں کیا کچھ ہے یا غیبی حقیقتیں کیا کچھ ہیں۔ اور محفل انس، یعنی وہ محفل کے جس میں خدا سے انسیت اور قربت ہو اور انسان اس کی لذت کو محسوس کر سکے، یعنی ایک جملہ جو ہم آپ بہت کامنلی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ایون نماز شب کی لذت محسوس نہیں ہوتی، یا قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، یہ سب کے سب کیا چیز ہے کہ وہ جو عالم غیب ہے کہ جہاں پر اس کی حقیقت موجود ہے اور جس سے انسان کا دل کنیکٹڈ ہو، تو یہ تمام کے تمام لذتیں انسان کے قلب کو محسوس ہوتی ہیں وہاں سے، اور ہمارے درمیان کنیکشن کٹ آف ہو چکا ہے یہ ان حجابات کی وجہ سے، ان شہوتوں اور غفلتوں کے اور امیدوں اور آرزوؤں کے تار اور جنجال کی وجہ سے۔ علاوہ اس کے کہ کبھی کبھی خدا کی طرف سے ایک بجلی کی چمک آ جائے اور ہمارے دل کو روشن کر دے، اور کبھی کبھی کوئی ایسی کیفیت ہمیں اپنے اندر محسوس ہونے لگے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یعنی حقائق میں سے، سچائی میں سے، اور جو حقائق الہیہ ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالہ لکھا تھا کہ جس کا نام اسرار الصلاۃ تھا، جس حد تک ہماری استطاعت تھی اس حد تک اس میں اسرار الصلاۃ کے بارے میں بیان کیا تھا، اور کیونکہ اس کے بیانات عامۃ الناس یعنی کامن لوگوں کے حوالے سے اپروپریٹ نہیں تھے، تو میں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ اس میں سے بعض آداب قلبیہ کو، اب یہ جملہ اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ آداب قلبیہ معراج روحانی، معراج روحانی کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ معراج روحانی کے آداب قلبیہ میں سے بعض کو اس طریقے سے بیان کروں کہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ وہ کتاب میں نے پڑھی اسرار الصلاۃ، وہ بہت، انہیں چھوٹی ہے لیکن بہت عمیق ہے، بہت گہری ہے، اس میں مطالب بہت زیادہ کنسائز فارم میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اسرار الصلاۃ کیونکہ پراپر نہیں تھی، تو میں نے اس کے اندر سے کچھ چیزوں کو، جن کا تعلق کس کا ہے کہ یہ معراج روحانی یعنی نماز، اور یہ معراج روحانی کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ صلاۃ نماز مؤمن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے کہ رسول خدا نے معراج میں خدا سے ملاقات کی، اسی طریقے سے مؤمن اس نماز میں خدا سے ملاقات کرتا ہے۔ اور یہی چیز جو میں نے بار بار آپ کے سامنے بیان کی کہ صلاۃ بمعنی وصل، صلاۃ یعنی خدا سے ملاب، صلاۃ یعنی خدا سے تعلق۔
ایک چیز کنفیوز کرتی ہے، خدا سے ملنا وہ بالکل لاسٹ سٹیج نہیں ہوتی،
اس کی درجات ہیں یقیناً۔ یعنی خدا سے ملنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہ پیغمبر اکرم نے خدا سے ملاقات کی، جلووں کو دیکھا، لیکن کم از کم نماز میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ خدا کا ایک امپیکٹ اور ایک اثر तमाम चीज़ों से ज़्यादा इंसान अपने कल्ब पर महसूस करे या अपनी ज़ात में महसूस करे। अच्छा, इसमें चलें एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कि हम जब अजान के अंदर तीन जुमले पढ़ते हैं, हय्या अला सलात, हय्या अला फलाह और हय्या अला खैरिल अमल, ये तीन जुमले हमें क्या बताते हैं या बताना चाहिए नमाज के हवाले से? नहीं कि ये बैकग्राउंड जो जो इन्होंने बयान किया, इसी से हमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि नमाज की तरफ जब दावत, अजान दावत नमाज है, नमाज की तरफ बुलावा है, पुकार है, तो शहादत के बाद यानी गवाहियां देने के बाद, तीन गवाहियों के बाद तीन जुमले हैं, हय्या अला सलात, सलात की तरफ आओ, हय्या अला फलाह और हय्या अला खैरिल अमल। नहीं, मतलब ये तीन तीन चीज़ें हैं, क्या ये सीक्वेंस में हैं, ये तीनों जुमले एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं? पहले आप कहते हैं हय्या अला सलात, फिर कहते हैं हय्या अला फलाह, फिर हय्या अला खैरिल अमल, और अजान तकरीबन यहाँ पे पूरी हो जाती है जो उसे, क्या कहते हैं?
सीक्वेंस में लग रहा
है ये। जी, तो किस तरीके से?
आपने सलाह का माना बताया था पहले।
जी,
खुदा से ताल्लुक पैदा करना कुछ कहा था
आपने। जी, विसाल।
तो,
हाँ, अगर पैदा हो गया तो फिर ये सक्सेस।
यानी कि किस चीज की तरफ दावत दी जा रही है सबसे पहले, कि जब यानी वो इंसान, इसमें अजान पे अगर आप गौर करें, यही जो मैं मेराज रूहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आदाब कल्बिया, मैं उसी के हवाले से उसको चाह रहा हूँ कि देखें ये तमाम मैसेजेस मौजूद हैं जिनको हम गौर नहीं करते बिल्कुल भी, कि वो शख्स, वो इंसान जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, जो रसूल की रसालत का इकरार करता है, और यानी प्लस या माइनस दोनों चीज़ें, कि और इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसायत और विलायत पर यकीन रखता है, कबूल करता है, ठीक है, पहले तीन ये हैं, पहले तीन ये बातें। उसके बाद है कि ऐसे शख्स को दावत दी जा रही है किसकी तरफ? सलात की तरफ, कि आओ और खुदा से अपने ताल्लुक को कायम करो। तो ये हय्या अला सलाह, सलात की तरफ दावत दी, लेकिन उसके पीछे उसका प्री रिक्विजिट क्या है? तीन शहादतें, ठीक है, या इवन अगर हम अहले सुन्नत के हवाले से भी बात करें तो तौहीद और रसालत, हमारे लिए तौहीद, रसालत और इमामत, तीन गवाहियां देने के बाद एक दावत नामा है खुदा की तरफ से, हय्या अला सलाह, आओ और मुझसे ताल्लुक कायम करो, या अगर किसी दूसरे की जबान से, आओ और खुदा से ताल्लुक कायम करो। और खुदा से ताल्लुक कायम करना, करने का नतीजा क्या है? फलाह। फलाह का मतलब भी हमने अर्ज किया था कि फलाह के एक माना फलाह से मिलते हैं। फलाह यानी उस किसान और काश्तकार को कहते हैं कि जिसने, जो अपनी खेती का या अपनी ज़राअत का बेहतरीन सरमाया लेकर अपने घर को जाए। ये हय्या अलल फलाह, यानी तुम अगर खुदा से ताल्लुक कायम करोगे, पैदा करोगे, तो देन यू विल बी एबल टू रीप अ बाउंटीफुल क्रॉप एट द एंड ऑफ योर लाइफ। और हय्या अला खैरिल अमल, और यानी कि ये जुमला ऐसा है कि जो और ज़्यादा काबिल गौर है, कि उस तरफ आओ, किसकी तरफ आओ? अमल में सबसे बेहतर की तरफ आओ। अब यहां पर फिर दूसरा सवाल है, ये अमल में सबसे बेहतर क्यों कहा जा रहा है इसको? मिसाल के तौर पर आपने दो रकत फजर की नमाज पढ़ी, क्या क्या किया आपने? कोई खास काम नहीं किया। उसकी बनिस्बत आपने पूरा दिन भूखे प्यासे रहे, गर्मी में, रोजे में, आपने बहुत मशक्कत उठाई है। या आपने जकात दी, खुम्स दिया, आपने माल दिया, या हज में इतनी जहमतें उठाई हैं आपने, लेकिन उन सब जगहों पर यह जुमला नहीं आ रहा, बल्कि यहां पर यह कहा जा रहा है हय्या अला खैरिल अमल। क्या रीजन हो सकता है इसका? That is the best. यानी खुदा से विसाल कायम करना बेहतरीन अमल है। सही? अब उससे होता है लेकिन वो इनडायरेक्ट है। हर अमल की खुदा ने हिकमत बताई है। यानी रोजा जो है वो तकवा तक ले जाता है, आपका इन्फाक जोहद तक ले जाता है। लेकिन ये जो क्वालिटी है ना कि इंसान खुदा से बराह रास्त ताल्लुक पैदा कर ले, ये सिवाय नमाज के और किसी इबादत में नहीं है। तो ये तीन जुमले नमाज की हकीकत को याद दिलाते हैं। यानी जिस अमल की तरफ तुमको दावत दी जा रही है, ये अमल विसाल इलल्लाह, इस तरफ अगर तुम मुतवज्जे हो गए तो बेहतरीन सरमाया और नतीजा अपनी जिंदगी का लेके यहां से जाओगे, अगर हकीकत है नमाज की तरफ मुतवज्जे होगा। और अगर तुमने सलात कायम कर ली तो ये तमाम आमाल में बेहतरीन अमल है जो तुम अंजाम दोगे। ठीक है, इसीलिए ना कि ये जुमला जो मुझे यहां पर बयान हुआ कि मेराज रूहानी, ये मेराज का लफ्ज भी सिवाय नमाज के और किसी चीज के लिए नहीं आया, किसी अमल के लिए नहीं आया। और बाकायदा इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे तो उसकी पूरी कैफियत बयान की गई है। और अफ़ागे नमाज में कि जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं, जब आप क़िबला रुख होते हैं, तो एक्चुअली यू मस्ट स्टार्ट एलिवेटिंग फ्रॉम योर स्टेटस, और यहाँ तक कि आप तरक्की करके इन्हें वस्त नमाज में आप खुदा तक पहुँचो। और फिर उसके बाद जब आप आखिरी सजदे के बाद तशहुद और सलाम पढ़ रहे होते हैं तो दर हकीकत ये लौटने का सफ़र है। यानी जब आप खुदा से या अपनी मेराज से मुलाकात, खुदा से मुलाकात करके वापस दुनिया में आ रहे होते हैं तो सबसे पहले आप दोबारा फिर वही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और इस ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद सबसे पहले नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम करते हैं। इन्होंने इस तरीके से बताया कि ये आखिरी सजदे के बाद जो तशहुद और सलाम है, दैट इज़ योर रिटर्निंग जर्नी टू दिस वर्ल्ड। वरना हालत नमाज में इंसान या मोमिन, मोमिन हकीकी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और जिसके बारे में बहुत अच्छे इरफानी अशार भी हैं और इस किस्म के कि बहिश्ते जावेदा बाजार शाम बे या बेहमदो कुल हुवल्लाह कार शाम बे, कि हमद और कुल हुवल्लाह यानी ये वो लोग हैं कि जिनके काम हमद और कुल हुवल्लाह से बनते हैं। और बहिश्ते जावेदा बाजार शाम बे, और ये इनके जो बाजार हैं जहाँ से ये खरीदो फरोख करते हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली बहिश्त है। कि ऐसे ये वो लोग हैं कि जो अपनी नमाजों में हमेशा मतलब ये काम कर रहे होते हैं कि खुशा आना के दाएम दर नमाजंद, के ऐसे लोग के जो अपनी नमाजों में हमेशा बहिश्त बरी से खरीदारी करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नमाज के हवाले से बयान की गई हैं। तो ये मेराज रूहानी का कंसेप्ट, शायद के बरादरान ईमानी इस तज़क्कुर से यानी इस याद दहानी से अपने कल्ब की सख्ती को के लिए कुछ असर पैदा करने में कामयाब हो जाएं, और मैं खुदाए तबारक व तआला से पनाह तलब करता हूँ शैतान के तसर्रुफात से, और इस चीज़ से कि ज़िंदगी का नतीजा ज़िल्लत व रुसवाई हो। तसर्रुफ का मतलब ये होता है कि उसको ये अथॉरिटी मिल जाए अपना इख्तियार उस पे चलाने की। तसर्रुफ का मतलब ये होता है कि आपको एक चीज़ को इस्तेमाल करने की अथॉरिटी मिल जाए। तो ज़ाहिर है वो खर्च भी आप तभी करेंगे, खर्च भी आप उसी चीज़ को करेंगे कि जिस पर आप इख्तियार रखते हो। तो तसर्रुफात शैतानी का मतलब यह है कि खुदा ना करदा कि मैं ऐसा हो जाऊं कि शैतान को मेरे नफ्स पर अपना इख्तियार चलाने की अथॉरिटी हासिल हो जाए और फिर वो मेरे नफ्स को यूज़ करे अपने पर्पजेस के लिए, माज़ल्ला। यह है मतलब तसर्रुफात शैतानी कि हम इससे पनाह तलब करते हैं व हुसूल खिजलान, और इससे कि ज़िंदगी का माहसल फलाहियत ना हो बल्कि खिजलान यानी ज़िल्लत और रसवाई हो, कि इंसान माज़ल्ला जब ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करे, खुदा की बारगाह में पहुँचे, मलाइका सामने आए तो उनके सामने कटिंग अ सॉरी फिगर। जो पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों के वहाँ पर जो बात अर्ज़ की थी वो बहुत अहम है कि सूरह वाक़िया का आखिर जो है ना, जो मैंने उसको बयान किया था कि सूरह वाक़िया के शुरू में क़यामत का नक्शा खींचा गया है साबिकून के लिए, असहाब यमीन के लिए और असहाब शिमाल के लिए, और सूरह वाक़िया के आखिर में वक्त मौत की कैफियत बयान की गई है उन्हीं तीन ग्रोहों के लिए कि वो एज़ा बलगत अल-हुल्कूम, और उसमें उनको बयान किया गया है कि उस वक्त जो मुकर्रबीन हैं वो ख़ुद अपने को जन्नत के तौर पर देख रहे होंगे, फ़राहन व रैहान व जन्नत व नईम, के जो मुकर्रबीन हैं वो अपने आप को ख़ुद बहिश्त के तौर पर देखेंगे। जो असहाब यमीन हैं फ़सलामुल्लका मिन असहाब यमीन, कि असहाब यमीन अपने को निजात याफ्ता पाएंगे लेकिन उन्हें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि अगर रसूल खुदा नहीं होते तो हम ये निजात नहीं हासिल कर सकते थे। यानी विलायत रसूल व आले रसूल है जिसकी वजह से निजात याफ्ता हुए। तो फसलामुल्लका, और जो मुकज़्ज़िबीन और वालीन हैं उनके लिए हमीम में से नुजूल। ये फ़र्क है कि वक्त मर्ग फ़र नुजुल मिन हमीम है और आखिरत में फ़ी समूम व हमीम है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये खिजलान और फलाहियत एन वक्त एहतजार वक्त मौत सबको नज़र आ जाती है कि खुदा ना खास्ता इस ज़िंदगी का जो मैंने गुजारी इसका नतीजा माज़ल्ला ज़िल्लत और रुसवाई है या फलाह और निजात है। ठीक है, इसके लिए क़यामत तक इंतज़ार करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो नफ्स मुस्तईद हैं समझदार और होशियार है उसे इस वक्त भी पता है कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जन्नत में या जहन्नम में। इस किताब को मैंने इस तरीके से मुरत्तब किया है कि इसका एक मुकद्दमा है, चंद मकाले हैं और एक खातिमा है। मुकद्दमे के चार छः जुमले पढ़ के और थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह आज की हद तक। इस बात को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए कि नमाज के लिए उसकी ज़ाहरी शक्ल के अलावा एक मायना भी है। मायना का मतलब क्या होता है? हालांकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही एक जुमला है, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि जैसे अल्फाज हैं, अल्फाज छिलका होता है, मायना उसका गूदा और मगज़ होता है। अगर आप किसी भी फल को लें तो फल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब उसका असल चीज़ उसका गूदा है, मगज़ है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर खुदा ने एक पोस्तीन चढ़ाई, एक लिबास है छिलके का। तो आप फरमाते हैं कि जब भी अल्फाज बयान किए जाते हैं, ये लफ्ज़ों में बात की जाती है, तो लफ्ज़ छिलका है, इससे ज़्यादा नहीं है। असल चीज़ मायना है जो मगज़ के माने उस छिलके के अंदर पोशीदा होती है। तो इंसान अगर वाकयन बाफहम है, समझदार है, तो वो मग़ज़ तक यानी मायना तक पहुंचता है, न कि छिलके तक रह जाए। ठीक है, इसी से ये जुमला है मायनवियत। मायनवियत का मतलब क्या है? कि इंसान किसी भी चीज़ को देखे सुने तो उसके मायना तक पहुंचे, न कि फ़कत ज़ाहरी अल्फाज तक रह जाए। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि इस के नमाज के लिए उसकी ज़ाहिरी सूरत के अलावा मायना है, यानी उसकी एक हकीकत है, मायनवियत है, और ये ज़ाहिर के अलावा एक बातिन है। ठीक है, पहला ही जुमला जो है ना वो बिल्कुल झंझोड़ने वाला है कि जो नमाज की जाहिरी शक्ल है, नमाज की जाहिरी शक्ल क्या है? नमाज की जाहिरी शक्ल क्या है? यानी ये जितनी चीज़ें कि जिस पर हमें बचपन से, जिसका हमें पीछे पढ़ पढ़ के जिसको प्रैक्टिस कराई गई कि वुजू के अंदर हाथ यहाँ तक धुलें और चेहरा यहाँ तक धुले और इस तरीके से हो और फिर उसके बाद ऐसे खड़े हो और ये करो रुकू में ये हाल, ये सजदा, ये क्या है? ये जाहिर नमाज है या सूरत नमाज है? जाहिर नमाज या सूरत नमाज है? तो इसके पीछे एक मायना है और जाहिर के पीछे एक बातिन है, ठीक। और जिस तरीके से कि जाहिर के लिए आदाब हैं कि अगर उनकी रियायत यानी उनकी पाबंदी ना की जाए की गई तो वो नमाज के बातिल होने का सबब बनते हैं। लेकिन कौन सी नमाज के? जो नमाज है सूरी यानी जाहिरी, सूरत वाली नमाज है, जाहिरी नमाज है, उसके बातिल होने और उसके नुकसान का सबब और वसीला बनते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि वुजू के अंदर हाथ सही से नहीं धुला, या मसा दुरुस्त नहीं हुआ, या किबले की तरफ जानते बूझते उससे हट के किसी तरफ खड़े हो गए, सजदे दो की जगह एक कर दिए, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होगी कि जो नमाज आप और हम पढ़ रहे हैं वो नमाज बातिल हो जाएगी, यानी उसकी जो एक ज़ाहरी और सूरत वाली शक्ल है वो बातिल हो जाएगी। इसी तरीके से नमाज के बातिन के लिए भी आदाब हैं। जिस तरीके से कि ये जितने आदाब हमको सिखाए जाते हैं ये जाहिर नमाज के लिए हैं, नमाज की सूरत को मेंटेन रखने के लिए हैं, इसी तरीके से नमाज के बातिन के भी आदाब हैं कि अगर उनकी रियायत नहीं की गई, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की गई तो नमाज मानवी या बातिल हो जाएगी या उसको नुकसान पहुंचेगा। नुकसान का मतलब समझते हैं, नक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यानी हम एक खराबी के लिए आमतौर से दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक ऐब और एक नक्स। ऐब और नक्स, तो नमाज मायूब कब होती है, नमाज नाकिस कब होती है?
नाकिस यानी कोई चीज मिसिंग हो गई हो
जी,
उसमें कोई चीज की कमी आ गई,
कमी आ गई। और मायूब का मतलब
यानी
नहीं, मायूब का मतलब कि तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं, क्वालिटी में खराबी है। इन्हें इसकी बहुत अच्छी मिसाल दी जाती है कि जैसे ये हॉल है, आपको इस हॉल पे एक कारपेट लाके बिछाना है। आप एक कारपेट लाए, आपने हॉल में बिछाया, वो पूरे फ्लोर को कवर कर रहा है, लेकिन कहीं से उसका रंग ख़राब हो गया है, कहीं से उसमें धागे निकल रहे हैं, कहीं और प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कहेंगे? ये मायूब है, ऐबदार, ऐब वाला। यानी चीज़ पूरी है, रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, लेकिन क्वालिटी ख़राब है, ये ऐबदार है। यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे जब हमने नमाज पढ़ रहे हैं, हम रुकू सजदे सब पूरे हैं, लेकिन उसके अंदर तवज्जो नहीं है, या बहुत जल्दी जल्दी कर लिए, या उठ बैठ जल्दी रहे, तो ये ऐबदार यानी रुकू है लेकिन क्वालिटी ख़राब है, सजदे की क्वालिटी सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नाकिस का मतलब ये होता है कि आप कारपेट तो अच्छा लाएं लेकिन आधे फर्श को कवर कर रहा है, आधा फर्श ऐसे ही खाली पड़ा हुआ, ये नाकिस है, ठीक है। तो नुकसान का मतलब जैसे अभी हुसैन भाई ने कहा बिल्कुल सही कि समथिंग इज मिसिंग, यानी कोई चीज मिसिंग हो या नाकिस है, चीजें तमाम पूरी हों, क्वालिटी खराब हो या ऐबदार है। अच्छा, इसी के मुकाबले में दो लफ्ज हैं, यानी कि ये खराबी के हैं, इसके मुकाबले में दो परफेक्शन की भी दो किस्में। नाकिस के मुकाबले में है ताम और ऐब के मुकाबले में है कमाल, सही। यानी कि अगर आप नाकिस के अंदर जो चीज़ मिसिंग है उस मिसिंग चीज़ को प्रोवाइड कर दें तो वो चीज़ तमाम हो जाएगी, ताम हो जाएगी। और ऐब के अंदर यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें तो आप कमाल तक पहुंच जाएंगे। अगर इसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक बड़े अच्छे कंसेप्ट से वाजे होते हैं कि कमाल का मतलब क्या है, कि तमाम चीजें भी पूरी हों और हर चीज की क्वालिटी भी सही हो, तब कमाल है।
तो, के लिए तमाम होना जरूरी
है। तमाम भी और फिर उसका मेयार भी। तो इस तरीके से यानी कि अगर हम बातिन के लिए बातिन के आदाब का ख्याल नहीं रखेंगे, उसकी रियायत नहीं करेंगे, तो नमाज मानवी या बातिल हो जाएगी या नाकिस हो जाएगी। ठीक है, नाकिस का मतलब समथिंग इज मिसिंग, बातिल का मतलब इट बिकम्स नल एंड वॉइड, मतलब उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। कि जिस तरीके से कि एक हदीस में ये जुमला आया, दो जो आगे हदीसें भी इसमें आएंगी, कि दो हदीसें आपके लिए मुख्तसरन जिक्र करूँ, कि एक में यह है कि एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज जिस जगह पर वो खड़ा है उससे ज़र्रा बराबर बुलंद नहीं होती, और एक इंसान नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज पुराने कपड़े की तरह लपेट के उसके मुंह पे मार दी जाती है। ठीक है, तो इस ये किस वजह से है? कि ये जाहिरी तौर पर वो रियायत कर रहा है, जाहिरी तौर पर उसकी नमाज सही है, फिकही नमाज दुरुस्त है, लेकिन उसके बातिनी और मानवी एतबार से बातिल है। तो खुदा की नजर किस चीज पर है? खुदा की नजर इंसान के कल्ब पर है, न कि इंसान के जाहिर पर। यानी खुदा तुम्हारे कुलूब को देखता है और उस बुनियाद पर तुमसे मामला करता है, न कि फकत तुम्हारे जाहिर को। और जाहिरी जो आदाब हैं इनकी हिकमत क्या है? यानी ये जो नमाज में जाहिरी तौर से हमको ये सिखाया गया, ऐसे खड़े हो जाओ, इस तरीके से झुक जाओ, ऐसे सजदा करो, इसकी हिकमत क्या है इस जाहिरी नमाज की? इस जाहिरी नमाज की हिकमत यह है कि अल्लाह की बंदगी का असर इंसान के कल्ब पर आए। तो ये जाहिरी नमाज हकीकतन कुछ भी नहीं है अगर उससे वो असल मकसद हासिल ना हो रहा हो। यानी अगर हम झुके और हमें इस बात की तवज्जो ही नहीं किसके आगे झुके और क्यों झुके, अगर हमने अपनी पेशानी और नाक खाक पे रख दी और हम इस बात को सोच ही नहीं रहे कि ये हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान अगर अपनी नाक और पेशानी, ये दो चीज़ें होती हैं ना जिसके बारे में मुहावरे भी बहुत ज़्यादा हैं, कि या पेशानी ऊंची रखना और नाक ऊंची रखना, ये दो ही चीज़ों के बारे में ना, कि जो जिसे कहते हैं फ़ख्र व गुरूर के हवाले से या अपनी बड़ाई के हवाले से, ये दो लफ्ज़ों के ऊंचे, दो आज़ा के ऊंचे रखने की बात होती है, पेशानी ऊंची रखना और नाक ऊंची करना। इन दोनों चीज़ों को सजदे में खाक पर रख दिया, यानी अपनी टोटल जिल्लत का इजहार है ये, है ना, कि जिस चीज को मैं नीचा होना नहीं कभी पसंद करता हूं, इन दोनों चीजों को खाक पे रख रहा हूं। किसके लिए खाक पे रख रहा हूं? तवज्जो ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे, कोई असर ही क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये वो नमाज है कि जिसकी कोई वर्थ नहीं है खुदा की बारगाह में, क्योंकि इस जाहिर को इस तरीके से बनाया गया है, जाहिर को इस तरीके से बनाया गया है, इसकी हिकमत यह है कि बंदगी के असरात नफ्स तक जाए। यानी जब हम किसी के आगे, सबसे पहले ये कि क़िबला तरफ की तरफ रुख किया, अब हमने कहा मैं कट ऑफ हो गया सबसे, क्योंकि हालत नमाज में आपसे कोई बात करे, चीत करे, कोई चीज़ है, उसूली तौर से आप मुतवज्जे नहीं हैं, यानी मैं कट ऑफ हो गया। उसके बाद आप झुक गए, हालत रुकू में आ गए, आपने फिर हालत रुकू को भी काफ़ी नहीं समझा, आपने अपनी नाक और पेशानी खाक पर रख दी, अभी भी नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है, मतलब इस जगह तक पहुंचने के बाद भी होश नहीं आ रहा या तवज्जो नहीं हो रही कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो जो इतनी गफलत के साथ नमाज को अदा करे तो उसकी नमाज ना बुलंद होती है, और वो पुराने कपड़े की मिसाल इसीलिए दी गई है कि जैसे है ना कि बिल्कुल मैला मलगजा जो कपड़ा होता है उस वो हालत है उस नमाज की, कि उसी की तरफ लौटा दी जाती है कि उसको तुम खुद रखो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी।
ये जो चर्च में ये होते हैं वो भी तो मुतवज्जो होते हैं खामोशी से, मतलब इसी तरह
किसी भी हालत में। हाँ
उसी तरह की कैफियत आ रही होती है।
देखिए इबादत तो उनके पास भी है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि नमाजों का हुक्म सबके पास था, मतलब दीन मूसा में भी था, दीन ईसा में भी था, और बल्कि उनकी नमाजें तो ज़्यादा थी हमसे, यानी उसमें रकात की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। अब बाद में लोगों ने बदल बदल दिया, क्या कर दिया वो खुदा जाने।
देखिए
खुदा ने ये बात कही जो कुछ खुदा ने हमें हमारे सामने बयान किया, और इसीलिए मैंने वो अजान के अल्फाज भी आपके सामने दोहराए ताकि ये चीज़ और क्लियर हो जाए कि खुदा के बयान के मुताबिक जो पैगंबरों के ज़रिए से हम तक पहुंचा कि नमाज का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द बेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू अकम्पलिश इट। अगर इससे हटकर उस काम को करने की कोशिश की जाए तो रास्ता बहुत लंबा भी होगा, सख्त भी होगा, और इतना बेहतरीन नतीजा भी हाथ नहीं आएगा। ये नहीं डिनाई किया जा रहा कि नहीं हो सकता, तो ये इसका डिनाइल नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन जो दीन और जो शरीयत खुदा ने हमारे हाथों में दी है इसके बारे में यही कहा गया है कि ये ईजीएस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव है। लेकिन शरीयत का जो रास्ता हमारे हाथ में दिया गया है, नहीं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हज, जो बेसिकली पांच चीज़ें, कि ये उस यानी कि इंसान की परफेक्शन के हवाले से, इंसान को कमाल तक पहुंचाने के लिए, इंसान का आलम गैब से राबता कायम कराने के लिए, दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी। और बेस्ट रेसिपी के अंदर खुदा ने अपने उस इरादे को भी जाहिर कर दिया कि वल्लाहु युरीदु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, यानी खुदा ने जो ये कवानीन तुम्हारे लिए बनाए हैं इसमें इस बात का भी लिहाज रखा है कि तुम तबन यानी फिजिकली कमज़ोर हो, ज़ईफ़ हो, तो खुदा ने तुम्हारे लिए आसानी का भी पहलू इसमें मद्देनज़र रखा है, सख्ती को नहीं चाहे। ठीक है, दूसरे किसी को अगर नहीं पसंद आ जाए जो दिल चाहे करे, उसको रोका थोड़ी। और ये भी नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई ज्ञान ध्यान करे या रियाजात करे और सिंसियरली करे, नतीजा उसका निकलता है, सब चीज़ों का नतीजा, यानी अगर कोई सिंसियरली एक एफर्ट करता है उसका नतीजा है, लेकिन रिजल्ट में फ़र्क है। मैंने आप लोगों को एक चीज़ थोड़े दिन पहले एक आयतों के हवाले से बताया था ना कि जो खुदा के बताए हुए रास्ते को छोड़ के इल्म की राह पर आता है वो आसमान अव्वल से ऊपर नहीं जा सकता। आसमान अव्वल का मतलब क्या है कि उसको फिजिकल वर्ल्ड की बातें तो समझ में आ जाएंगी, बियॉन्ड द फिजिकल कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आसमान अव्वल से गुजरने के लिए जरूरी है कि मलाइका दरवाजा खोलें, ला युफत्तहु लहुम अबवाब अस्समा, और ये आसमानों के दरवाजे बगैर इज़्न खुदा के खुलते नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, वो छोड़ दे उस रास्ते को। मतलब दीन हमें हमेशा इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि ये दीन किसी जिद बहस का मसला नहीं है कि ये मेरा दीन या तेरा दीन और ये और वो, बल्कि ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है जिसको क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने हमारे सामने रखा है। तुम्हारे अच्छा लग रहा है मान लो, नहीं लग रहा नहीं मानो, जाओ जिस रास्ते पर दिल चाहे जाओ, लेकिन ये नतीजे निकलेंगे, ये समझ लो। और मैं समझता हूं कि हम सब इस बात के गवाही दे सकते हैं। हमारी क्या एफर्ट है आप बताएं, इल्म और ईमान के हवाले से अगर आप एफर्ट को देखें, कोई एफर्ट है हमारी? पांच वक्त की ऐसे ही नमाजें पढ़ ली रमजान के, क्या है? कोई कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं है। लेकिन जो नतीजा हम सबको इतने से दीन पर अमल करके मिला है वो कितना हैरत अंगेज है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है? आप कभी एक बेदीन शख्स से अपने को कंपेयर कीजिए, आपके नफ्स में कितनी तहारत है, पाकीज़गी है, रुझानात अच्छे हैं, कितनी ज़्यादा बातें हकायक के एतबार से आप उसके मुकाबले में समझते हैं। ये सिर्फ़ इस टूटे फूटे दीन का नतीजा है। मतलब क्या हमारी नमाज़ें हैं, क्या हमारे रोज़े हैं, क्या हमारी इबादत हैं, उस पर इतना कुछ मिल गया है हमें। तो अगर हम वाकयन दीन की रूह के मुताबिक उस पर अमल करें तो आप सोचें कहाँ पहुँचेंगे हम। ये बेहतरीन नुस्खा है जो खालिक़े कायनात ने हमारे हाथ में पकड़ा है। ये जिसे आप कहिए शरीयत या इबादत का जो निज़ाम है, दीन का जो निज़ाम है, ये किसी ज़िद के हवाले से नहीं है कि नहीं तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, यहूदी हो, नहीं, एक रियलिटी है। और ये एक इसका ये मुझे ही आयत इस तरीके से समझ में, आमतौर से तफसीर ऐसे नहीं होती कि जो सूरतुल काफिरून के आखिर में है कि लकुम दीनकुम वलिया दीन। तो मुझे इस बात ने स्ट्राइक किया था कि दीनकुम के जवाब में दीनी क्यों नहीं है। अगरचे के कहा जाता है अरबी के लिहाज से कि नून के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर का मतलब दीनी ही है, लेकिन नून पर ज़बर भी हो सकता है, लेकिन खुदा ने बहरहाल ये नहीं रखा यहाँ पे, या इसके एंड में नहीं है लकुम दीनकुम वलिया दीन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, हो सकता है कि ऐ कुफ्फार तुम्हारी नज़र में दीन मेरा तेरा है, मेरी नज़र में दीन एक हकीकत वाहिद है, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए दीन, न कि मेरा दीन। तो ये दीन की हकीकत वाहिद है। दीन के इस तरीके से नहीं है कि हम वो कहेंगे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, और तुम मुस्लिम हो तो तुम ये करते हो, तुम क्रिश्चियन हो तो तुम ये करते हो। नहीं, एक हक है, एक बातिल है, एक सच है, एक झूठ है। झूठ की 10,000 किस्में, या सच के मुख्तलिफ शेड्स हैं। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि अगर, यानी कि मिसाल के तौर पर, इंसान अगर इल्म में दिक्कत करता है उसको एक नतीजा मिलेगा, खुदा ने नहीं रोका। एक इंसान रियाजत और मेहनत करता है, तहजीब नफ्स पे काम करता है, उसे एक नतीजा मिलेगा, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमान यानी खुदा की बंदगी के साथ जो नतीजा मिलेगा वो कहीं बेहतर होगा बनिस्बत उस नतीजे के जो बंदगी के बगैर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। सही है ना, कि मिसाल के तौर पर आज अगर कोई लोग साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, यह खुदा की कुदरतों पर मेहनत है ना, उसका इल्म लोग कर रहे हैं, उनको खुदा दे रहा है, लेकिन क्योंकि बंदगान खुदा नहीं है, अब्दियत से दूर हैं, इसलिए जिंदगी में तलखी और कड़वाहट भी साथ मिली हुई है। अगर यही साइंस जो है ये बंदगी के साथ मिल जाए तो आप देखें ये दुनिया ही जन्नत बन जाए। बहरहाल, तो आदाब बातिन है, ये आदाब बातिन का ताल्लुक किस चीज से, जिस्म से नहीं है। आदाब जाहिरी का ताल्लुक जिस्म से, आदाब बातिन का ताल्लुक कल्ब से। यानी कि इंसान के कल्ब से, इंसान के नफ्स से आदाब बातिल। अगर इंसान आदाब बातिनिया का ख्याल रखे तो नमाज के अंदर रूह मलकूती आ जाएगी। ये एक और बहुत अहम जुमला है कि जब तक इंसान का कल्ब मुतवज्जे नहीं होता, नमाज सिर्फ एक जिस्म रहती है, उसमें रूह नहीं आती। नमाज में रूह यानी जान कब पड़ेगी, जब कल्ब मुतवज्जे होगा। और जो कल्ब के तवज्जो के आदाब हैं उनका ख्याल रखेगा तो क्या होगा, नमाज में रूह पड़ जाएगी, और वो रूह है मलकूती। रूह यानी जान जो है कि ये जो جس طریقے سے کہ ہم صرف خدا نخواستہ ظاہر کا خیال رکھیں اور باطن سے غافل رہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بے جان مجسمہ، نماز بے جان مجسمے کی مانند ہے. جب آداب قلبیہ اور باطنیہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے تب اس پیکر نماز میں، شکل نماز میں روح آ جاتی ہے. اور وہ کون سی روح ہوتی ہے؟ وہ روح ملکوتی روح ہوتی ہے. اور جو شخص مصلی ہے، مصلی ہے یعنی نماز پڑھنے والا ہے، اس کو اہل معرفت اور اصحاب قلوب کی نماز کے اسرار میں سے کچھ نصیب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی اس پہ آگے نہیں جاتا، تھوڑا سا یہ جو جملے ہیں کہ نماز کے فوائد اور نماز کے اثرات، اس کے حوالے سے قرآن کریم کی دو جگہ سے آیتیں آپ کو سنا دیتا ہوں بس. قرآن کریم میں یعنی سورہ بقرہ میں، آپ لوگ انشاءاللہ اگر اس کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہے تو سورہ بقرہ میں فرام آیت 31-40 یا 38 حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد آیت 39-40 سے لے کے تقریباً 120 تک 70-80 آیتوں میں بنی اسرائیل کے سے بات چیت ہے. صحیح، اچھا، یعنی ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تقریباً 75-80 آیتوں میں. اور اگر آپ کو پوری قومی اور اجتماعی زندگی کا پورا نقشہ سمجھنا ہے خدا کی نظر میں، تو وہ ان 80 آیتوں کو آپ پڑھ لیں، آپ کو پورا اجتماعی، قومی، معاشرتی، سیاسی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس کا خلاصہ. اور یہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 40 سے کہ یا بنی اسرائیل. جی نہیں، وہ تو 120 تک ہے جو پورا بنی اسرائیل سے گفتگو ہے. میں یہ دو تین آیتیں ابھی پڑھ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کو جب خدا نے ذکر کیا تو ان کو نصیحتیں کی، نصیحتوں کے بعد عمل کے اعتبار سے آیت نمبر 42 میں کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، یہ جو ان کی تھرو آؤٹ کریکٹرسٹک جو آج بھی باقی ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، آج بھی یہی کام ہو رہا ہے، حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور تم حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم علم رکھتے ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن حق کو چھپاتے ہو، بلکہ صرف چھپاتے نہیں ہو، حق کو باطل کا لباس پہنا دیتے ہو کہ لوگ اس کے قریب نہ آئیں. اس کے بعد ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے آیت نمبر 43 میں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اقیم الصلاۃ، پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا بھی تھا کہ قرآن کریم میں اقرأوا الصلاۃ کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، فریز اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکاۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اسی حکم کو ایک دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، ٹیک ہیلپ، سیک ہیلپ، کس چیز سے ہیلپ؟ دو چیزوں سے، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مددگار دو چیزیں. یہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں؟ نماز کا فائدہ، نماز کا نتیجہ، نماز کی آؤٹ کم، لائف میں کیا ہونی چاہیے، یہ کیا ہوتی ہے. نماز انسان کی بہترین مددگار ہے، صلاۃ، لیکن کون سی نماز؟ جو صلاۃ ہے، یعنی جس میں بندہ اپنے خدا سے جڑتا ہے. اور صبر، صبر کے معنی آپ کے ذہن میں ہے نا، مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ صبر کو بھی بہت غلط سمجھا جاتا ہے. معنی ہے کلیئر؟ جی ٹھیک ہے. جی جی، صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، صبر بمعنی استقامت ہے، کہ انسان کی زندگی میں مشکلات اور دشواریاں آئیں لیکن انسان اس کے سامنے جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، شکستہ نہ ہو، اور تمام مشکلات کے سامنے استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، اس کوالٹی کا نام صبر ہے. और वही जैसे इमरान भाई कह रहे हैं कोह पैमा वाली मिसाल जो आगे खामनई ने दी है अपने, उनका एक छोटा सा मकाला है सब्र पे, अगर कभी मिले तो वो पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है। कि उन्होंने सब्र की मिसाल इसी से दी है कि जैसे एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला कि जो हमेशा अपने मकसद को सामने रखता है और उसके रास्ते में जितनी दुश्वारियाँ आती हैं सब किसको अबूर करता चला जाता है, ये साबिर है ऐसा इंसान। तो ज़िंदगी में दो चीज़ों से मदद तलब करो, पहली सब्र कि ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो, और वस्सलात और नमाज, यानी इस सलात में इतनी जान है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी के मुश्किलात में अलॉन्ग साइड सब्र तुम्हारी मददगार साबित होगी। वَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, इस जुमले पे भी ख़ास तौर से ज़ोर देना है, وَإِنَّهَا, और बेशक वो, अब बेशक वो में क्या चीज़ आनी चाहिए, सलात, لَكَبِيرَةٌ भारी है, कबीर है बुज़ुर्ग है भारी है, और ये जुमला सही है या नहीं कि नमाज भारी है, यानी सलात भारी है, कि नमाज को सलात को इस तरीके से अदा किया जाए कि उसमें विसाल हो, विसाल इलल्लाह हो, ये आसान काम नहीं है। इल्ला अलल खाशिईन, ये क्योंकि यहूदियों के हवाले से ज़िक्र हो रहा है तो इस अंदाज से बात हो रही है कि ये कैसे हैं, कि इनके लिए बहुत सख्त है ये नमाज, ये इन जैसे लोगों के लिए बहुत सख्त है। तो ये नमाज भारी है, इसका बोझ उठाना हर एक के बस की बात नहीं है, मगर खाशेईन, खाशे कौन लोग हैं कि जिनके दिल खुदा की बारगाह में झुके हुए। ये फिर वही बात आ गई, आदाब कल्बिया, और कर रहे हैं आप, यानी खुदा ये नहीं कह रहा कि जो नमाज बहुत अदब से पढ़ रहे हैं, बल्कि इस नमाज का बोझ कौन उठा सकते हैं, जिनके दिल खुदा की बारगाह में झुके हुए हैं, यानी नमाज को का हक अदा करने के लिए ज़रूरी है कि कल्ब मुतवज्जे। क्लियर हो गई ना बात, कि ये ज़ाहरी नमाज के हवाले से खुदा कुछ भी नहीं बयान कर रहा है, बल्कि इस नमाज का बोझ उठाना इस सहल किसके लिए, गवारा किसके लिए, उनके लिए कि जिनके दिल खुदा के आगे झुके हुए हैं। और बात यहाँ तक नहीं हुई, खाशईन की तारीफ भी बयान की गई है, और ये कुरान करीम का बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है कि आप लुगत से मदद ज़रूर लें और उससे समझें, लेकिन कुरान ने जो टर्म्स बयान किए हैं ना उनको ख़ुद डिफ़ाइन भी किया है, और वो मच मच रिचर है वो मीनिंग लुगत के मुकाबले में, कहीं ज़्यादा उसके अंदर गहराई और वसत है। तो खाशईन की तारीफ हम अगर वैसे लिटरेली सेंस में करें तो ये है कि जिनके दिल झुके हुए हों, जिनके दिलों पर खुदा का असर है। अब ये आयत खुद बयान कर रही है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, खाशईन कौन है, किसके दिल खुदा की बारगाह में झुकते हैं, खुशू वाले कौन हैं, जो इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करना है, वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिन्हें ये बात जिनसे जुदा नहीं होती कि हम खुदा की तरफ पलट रहे हैं, इनके दिल झुकते हैं, ये खाश हैं। अब कौन सी लुगत है जो इस माना को इस तरीके से बयान कर सकती है, सही, कि यानी ये दोनों चीज़ें, दोनों चीज़ें कौन सी, दोनों चीज़ें इस बात का उम्मीदवार होना कि मुझे अल्लाह से अपने रब से मुलाकात करना है, और इस बात का ख्याल रखना कि हम उसकी तरफ पलट रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक किससे, कल्ब इंसान से, ये आदाब कल्बिया हैं, ठीक है ना, कि जिस आदाब कल्बिया की बात कर रहे हैं कि जो नमाज के बातिन को बनाते हैं, नमाज के अंदर मानवियत को पैदा करते हैं, वो आदाब कल्बिया क्या हैं ये, और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको समझा दिया कि ये सलात तुम्हारे लिए बायस इस्तेआनत है, इन्हें तुम्हारे लिए हेल्प का ज़रिया है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें मजबूती से खड़ा होने में मदद देगी ये नमाज, सब्र के साथ ज़िंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने में मदद करेगी तुम्हारी। लेकिन अच्छा आप देखें इसमें, यहाँ पर इन्नहा का लफ्ज़ है, खुदा ने इन्नहुमा नहीं कहा है, کہ صبر اور نماز دو کا ذکر ہے نا, لیکن آگے ذکر فقط نماز کا ہے. انہما یعنی یہ دونوں نہیں, یعنی اس سے ایک اور بڑی عمدہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صبر بھی حقیقتاً صلاۃ پر ڈیپینڈنٹ ہے. ہاں, صلاۃ کے علاوہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. صحیح, یعنی کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صبر بھی صلاۃ پر موقوف ہے اور ڈیپینڈنٹ ہے. کہ اسی لیے جو بات وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیا ہے اس میں, اس میں کوئی بہت خاص چیز ہے, تبھی خیر العمل بھی ہے, تبھی فلاح بھی ہے, تبھی معراج مؤمن بھی ہے. کیونکہ جس انداز سے یہ بات ہو رہی ہے اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ زندگی میں انسان کا پراستقامت ہونا, مضبوط ہونا, یہ بھی صلاۃ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کہ جو خدا سے تعلق جوڑتا ہے حقیقتاً وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور زندگی کے مسائل اور مصائب کا مقابلہ کر سکتا ہے. اچھا, وقت ٹھیک ہے, کافی ہو گیا, چلیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو تھوڑا تفصیل سے بات کریں گے. اور یہ آیت ہے 152 سے آگے سورہ بقرہ. یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے اور رسول سے اور مسلمانوں سے, ٹھیک ہے. پیچھے آپ نے جو خطاب تھا جہاں پر اقیم الصلاۃ, آت الزکاۃ اور پھر واستعینوا بالصبر والصلاۃ, وہ بنی اسرائیل وہاں مخاطب تھے, اور بنی اسرائیل کے خطاب میں خدا نے کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ بزرگ ہے, سخت ہے, مگر خاشعین کے لیے, خاشعین کی یہ کوالٹی ہیں کہ جو اس بات کا کی امید رکھتے ہیں کہ انہیں خدا سے ملاقات کرنی ہے, اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, اور وہ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. یہ جو دوسرا انسٹنس ہے, یہ آیت 152, اس کے پیچھے وہ سارا تحویل قبلے کا بیان ہے. یعنی دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ, یہ سارا کا سارا بیان رسول خدا اور مسلمانوں سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں بات ڈفرینٹ ہو رہی ہے بالکل, کیونکہ مخاطب الگ ہے تو نتیجہ بھی الگ آ رہا ہے. 152 ابھی میں پڑھ دیتا ہوں, انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے. فذکرونی وذکرکم, تم میرا ذکر کرو, ذکر کرنے سے مطلب مجھے یاد رکھو. اذکرکم, میں تمہیں یاد رکھوں گا, یعنی تمہارا ذکر کروں گا. وشکرولی, اور میرے لیے شکر گزار ہو جاؤ, میرا شکر کرو. ولا تکفرون, اور تکفرون یعنی کفران نعمت نہ کرو, نہ سپاس اور نہ شکر گزار نہ بنو. یا ایہا الذین آمنو, اب پہلے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان سے تھا, اب ایمان والوں سے وہی حکم ہے. صحیح, وہی حکم ہے لیکن اب مخاطب ڈفرینٹ ہے. یا ایہا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ, اب اس کا اگلا جملہ وہ نہیں ہے جو وہاں تھا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, کیونکہ وہاں گفتگو تھی نالائقوں سے. ریکمنڈیشن ایک ہی ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو, زندگی میں مددگار کی تلاش ہے کہ جو تمہاری, جس کے اٹیچمنٹ سے تمہاری زندگی کی پرابلم سالو ہو, ان دو کو اپنے مددگار کے طور پہ لے لو, بلکہ حقیقتاً نماز, کہ یہ صلاۃ ہی صبر کی بھی جنریشن کا سبب بنتی ہے. لیکن یہاں خطاب ہو رہا ہے مومنین سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو اگلا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اس میں ایک بہت خوبصورت ہے اگر اس کو اس سے ملائیں. وہاں پر ایمفیسس صلاۃ پر ہے جب بنی اسرائیل سے بات ہوئی, انہا لکبیرتن الا علی الخاشعین. مومنین کے ساتھ جب ذکر ہوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا, یہاں ذکر اس کے بعد صبر کا ہے. ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صابرین کی معیت میں ہے. یہ فرق کیوں آیا؟ जब बनी इसराइल से बात हो रही है तो वहाँ सलात को हाईलाइट किया जा रहा है, पोस्ट स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सलात, यहाँ पर पोस्ट स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सब्र। ये पूरा वही सीक्वेंस समझा रहा है जी, वो भी है, लेकिन इसमें जो वही सीक्वेंस है कि असल चीज सलात है, कोर में सलात है, सलात की बुनियाद पर सब्र हासिल होता है, सब्र की क्वालिटी हासिल होती है, और क्योंकि मोमिनीन साहिबान सलात हैं लिहाजा साबिर भी हैं, और खुदा साबिरीन की मईयत में, खुदा साबिरीन के साथ है। जो जब मोमिनीन के बारे में बात की जा रही है तो मोमिनीन के लिए इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है खुदा की तरफ से कि ये सलात में कमजोर हैं, बल्कि मोमिनीन के साथ खुदा की एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये सलात से शुरू करके सबर तक पहुंच चुके हैं और मैं इनके साथ हूं। लेकिन जब उन नालायकों के साथ गुफ्तगू हो रही है तो उनसे कहें पहले ही स्टेज तो मजबूत करो, पहले मरहले पे तो आओ, तुमसे सबर की क्या बात की जाए। बात वाजे हो रही, तो उस वक्त उनसे कहा गया कि ये सलात का बोझ उठाओ, और ये बोझ नहीं उठेगा जब तक कल्ब में खुशू नहीं पैदा होगा। तो ये बहुत क्लियरली जो आदाब कल्बिया और बातिनिया की जो बात की जा रही है ना, बहुत खूबसूरत समझ में आती है इन आयतों से कि आप देखें कि परवरदिगार आलमीन बेसिकली नमाज को खुद खुदा किस नजर से देख रहा है। यानी हम नमाज को देखते हैं ये बिल्कुल फ़िक़ही पहलू से, खड़े हो गए, वज़ू सही हो गया नहीं हो गया, क़िबला रुख सही है, सजदा रुकू सही हो गया, खुदा किस नज़र से देख रहा है नमाज को कि ये नमाज का जो तोहफा हमने तुमको दिया है दैट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, जिसके ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल और मसाइब पर काबू पाने में तुमको, तुम्हारे लिए टूल है, ज़रिया है। खुदा इस नज़र से देख रहा है नमाज को कि ये सलात वसीला है, सब्र है, और साबिरीन के साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा है वो कभी नाकाम नहीं होता। ऐसे भी वो बात कह रहे थे आगे 156 जो मैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा पढ़ेंगे ताकि ये बयान मुकम्मल हो जाए। सही, तो बात वाज़े हो रही कि जब तक नमाज की मानवियत पर तवज्जो ना जाए, और मानवियत का ताल्लुक ज़ाहिर से नहीं है, बातिन से, कल्ब से। जाहिर की रियायत क्यों, इसकी ताकीद क्यों की गई है, ताकि कल्ब मुतवज्जे हो। सही है, जो जिसकी पूरी तफसील आगे चल के आएगी कि वजू करो तो ये इस तरीके से सोचो, नमाज के लिए क़िबला रुख खड़े हो तो ये करो, यानी कि पूरा का पूरा एक ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं जो हर रुकन नमाज के साथ वाबस्ता हैं कि कम अज़ कम इतना करो। जो जुमला मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, शहीद सानी की किताब असरार उस्सलात या आदाब उस्सलात का बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है कि आमतु नास की नमाज जो है वो लफ्ज़ अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, और वो कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ों की बुनियाद पर कल्ब मुतवज्जे हो जाए। मतलब हम तो शायद उससे भी गए गुजरें कि पूरी पूरी नमाज पढ़ जाते हैं और ये वाली कैफियत ही नहीं होती कि कम अज़ कम लफ्ज़ मानी की तरफ मुतवज्जे करा दें। और अहलुल्लाह की नमाज या औलियाए खुदा की नमाज होती है कि कल्ब पर कैफियत तारी होती है, और वो कैफियत लफ्ज़ों में ढलकर ज़बान तक पहुँच आती है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके कल्ब की कैफियत है जो ज़बान पर जारी होती है, न कि ज़बान से कहे हुए अल्फाज हैं कि जिसको दिल की तरफ धक्का दिया जाता है कि कुछ सोच लो और कुछ समझ लो।
शहीद सानी मुतहरी साहब?
नहीं, ये तो बहुत पहले थे, तकरीबन शेख ज़ैनुद्दीन आमली, और ये मोहतरम बुज़ुर्ग, मतलब जिन्होंने की ज़िंदगी बहुत मसायब और परेशानियों में गुजरी और शहीद हुए शाम में और लबनान में थे, ये जबल आमिल के इलाके में, आई थिंक एटलीस्ट 500-550 साल पहले का दौर है इनका।
शहीद सानी यानी सेकंड
सेकंड
पहले, और
शहीद अव्वल जमालुद्दीन मक्की कहे जाते हैं, वो भी जबल आमिल से उनका ताल्लुक था। शहीद सालिस काजी नूरुल्ला शूस्त्री को कहा जाता है,
जी, जो आपने
जिनको
बताया
इंडिया
है।
में
जी
जहांगीर बादशाह के हुक्म से शहीद हुए थे।
तो ये लोग हम लोग कहते हैं ये पूरा
नहीं
अलग
नहीं
होता है
हमारा
या
हमारा हमारे हमारे मतलब मकतबे तशय्यों में ये चीज़ एक लिहाज से एक्सेप्टेड है।
शहीद रावी भी है, हम बोल गए उनका
बकर उस सदर।